نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. غفور رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نبشر فرديك الله.
نعم هو بيعطيك.
جب اپنی زندگیوں کا مشاہدہ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہر چیز پہ قادر ہیں، اللہ پاک ہر چیز پہ قادر ہیں. جب تو اللہ اس چیز پر بھی قادر ہیں کہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو ایک دن میں ہی حمل ٹھہرا کے اور اگلے دن بچے کو ماں کے پیٹ سے باہر نکالنے ولادت ہو جائے بچے، لیکن ایسا نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین نے تدریجن رکھی ہر چیز پہ، 9 مہینے تک بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے. کیا اللہ پاک اس قادر نہیں تھے؟ نعوذ باللہ، کیا کہ اللہ پاک ایک دن میں بچے کو 9 مہینے کی جو ٹائم پیریڈ کو پورا کر دیتے؟ اللہ قادر تھے، لیکن اللہ کی حکمت ہے. حکمتیں ہوتی ہیں کہ اللہ پاک کوئی بھی چیز کرتے ہیں تو وہ تدریجن کرتے ہیں، آہستہ آہستہ کرتے ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے کرتے ہیں. اللہ کی اس میں حکمتیں ہوتی ہیں. پھر وہ بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑا ہونے لگتا ہے، پھر لڑکپن شروع ہوتا ہے، پھر جوانی، پھر اس طرح عمر بڑھتی ہے، بڑھاپا، پھر اس طرح معاملات بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو ایک دم سے نہیں ہوتا معاملہ، اکثر معاملات بعض دفعہ اللہ پاک جھٹ پٹ معاملات بھی کر دیتے ہیں، لیکن اکثر ہم کو جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ تدریجن نظر آتی ہیں. تدریجن یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ. تو اسی طرح سے اللہ کی طرف سے جب کسی کی نہیں اصلاح کے معاملات شروع ہوتے ہیں تو اصلاح بھی اللہ رب العالمین ایک دم سے نہیں کرتے کسی، بعض دفعہ ایک دم سے بھی ہو جاتی ہے، لیکن ایسا کم ہوتا ہے. روٹین میں یہی ہوتا ہے کہ اللہ پاک پہلے کسی فوت نے بھیج دیتے ہیں، کچھ لوگ تبلیغی جماعت میں چلے گئے، کچھ لوگ اللہ والوں کے پاس چلے گئے، بیت ہو گئے، تو پھر آہستہ آہستہ ان کی اصلاح ہونا شروع ہو گئی، اور پھر آہستہ آہستہ کر کے انہوں نے گناہ کرنے چھوڑ دیے. تو اسی طرح سے یہ معاملات ہوتے ہیں. وہ ترتیب جو یہی دیکھنے میں آتی ہے کہ اللہ رب العالمین اصلاح بھی آہستہ آہستہ کرتے ہیں. اور اسی طرح جب اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں تو اللہ پاک عذاب بھی ایک دم سے کسی کو نہیں دیتے، وہ بھی تدریجن اس کی اصلاح کے لیے پریشانی اور بلیات بھیجتے ہیں. تو اللہ پاک جو ہوتے ہیں وہ جو پریشانی اور مصائب بلیات جو ہماری اصلاح کے لیے بھیجتے ہیں اس کو عذاب کی شکل ہم اس لیے نہیں کہہ سکتے. عذاب تو کافروں پر ہوتا ہے، مسلمان کے اوپر جو چیزیں بلائیں وغیرہ آتی ہیں، ہر چیز جو ہوتی ہے وہ تو بھائی اس کی اصلاح کی نیت ہوتی ہے. مسلمان کے ساتھ جو بھی پریشانی ہوتی ہے مطلب اس کی اصلاح ہو جائے، اللہ پاک اس کو تقرب حاصل ہو جائے، تو وہ اس اللہ پاک پریشانی کی اصلاح بھی پریشانی بھی بھیجتے ہیں. وہ بھی ایک دم سے نہیں بھیجتے کہ ڈائریکٹ تھرڈ ڈگری بھیج دی بندہ ہی مر گیا. اسی چیز کو اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ اللہ رب العزت کو یہ فرمائے کہ اگر ہم لوگوں کے گناہوں کے سبب ہاتھ کے ہاتھ فوراً ان کی پکڑ کرنے لگتے تو روئے زمین پر تمہیں کوئی صاف لینے والا متنفی زندہ ہی نظر نہیں آتا. خود اللہ فرما رہے ہیں ہمارا طریقہ نہیں ہے، کیونکہ ساری بنی آدم فتح کار ہے بھائی، پتہ چلا یہاں گناہ ہوا وہاں اللہ کا عذاب آیا، وہاں پکڑ کر ہی ختم بننا مر گیا عذاب نہیں، تو پتہ چلا کہ پوری دنیا ہی ختم ہو گئی. تو اللہ فرما رہے ہیں ہمارا طریقہ نہیں ہے کہ ہم فوراً لوگوں کے بدعمالی کے سبب ان کو فوراً کے فوراً پکڑنا شروع کر دیں، بلکہ مطلب یہ کہ ہم مہلت دیتے ہیں، ہم اس کو ٹائم دیتے ہیں کہ شاید سدھر جائیں، شاید سدھر جائیں، شاید باغ آ جائیں، شاید باغ آ جائیں، شاید گناہوں کو چھوڑ دے، شاید 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 شاید. لیکن جب بندہ شاہدوں کو بھی حدوں کو توڑ دیتا ہے اور وہ عادتاً حرام کام مشکل ہو جاتا ہے، پھر ایک اللہ پاک تکمیل نظام شروع ہوتا ہے، پھر اس کی پکڑ دکڑ اور اصلاح کے لیے پریشانیاں بلیات اور مصیبتیں شروع ہوتی ہیں. مقصد کیا ہے؟ اصلاح ہو جائے، توبہ کرے اور رجوع اللہ ہو اور دین پر آئے، تقوی اختیار کرے، تو پھر اس کی پریشانیاں ختم کر دی جائے. دشمنی نہیں ہے اللہ کی. 21 پارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اس کا خلاصہ یہ آیت کا اللہ کو شاہ فرمائے کہ لوگوں کے گناہوں کے سبب زمینوں میں اور دریاؤں میں، سمندروں میں، خشکی میں اور تری میں لوگوں کے گناہوں کے سبب مصیبتیں اور بلائیں پھیلائی جا رہی ہیں. اللہ فرما رہے ہیں اتنی بلائیں مصیبتیں پھیلائی جا رہی ہیں، میں پھیلا رہا ہوں زمینوں میں اور سمندروں میں، اور وجہ کیا ہے؟ تمہارے گناہ. اور اللہ آگے کیا فرما رہے ہیں؟ مصیبتیں بلائیں پھیلائی جا رہی ہیں گناہوں کے سبب، تاکہ تم کو تمہارے بعض اعمال کا مزہ چکھائیں، बाज लव इस्तेमाल करना है, लगा हर गुना नहीं कि हर गुना का बहुत जगह है, बाज इसमें भी शान रहमत छुपेंगी। क्यों कि अल्लाह कितने ऐसे गुनाह होते हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ कर देते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। हर गुनाह पे पकड़ करने लगे तो हम तो जिंदे नहीं रह सकते, इसलिए अल्लाह ने बाफ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि अपनी रहमत से कितने ऐसे गुनाह होते हैं मैं दरगुजर कर देता हूँ, माफ़ कर देता हूँ, पकड़ में तो कोई कोई बाफ तुम्हारा गुनाह लेकर आता हूँ मैं, जो बहुत ही शिद्दत वाला होता है जब तुम हदों को तोड़ देते हो, ताकि तुम्हारे बाफ संभाल कर तुमको मवा चखाऊँ। मवा चखाने का क्या मतलब है? तकलीफ़ पहुँचाना, तकलीफ़ पहुँचाना। तकलीफ़ हो रही है ना तुम्हें, बस यही मैं चाह रहा था ताकि तुम्हें तकलीफ हो। वजह क्या है? ताकि तुम्हारी इसलाह हो। आगे अल्लाह क्या फरमाता है? ताकि तुमको तुम्हारे बागमाल का मगज चखाएं। अब भाई अल्लाह की हमारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है, 70 माओ से प्यार करने वाला है। आगे अल्लाह फरमा रहे हैं इस मगज चखाने का मतलब क्या है, वो दुश्मनी नहीं है। अल्लाह फरमा रहे हैं ताकि तुमको तुम्हारे हम बागमाल का मगज चखाएं, ताकि तुम हमारी तरफ वापस लौट आओ। मसला हल। लोग कहते रहे जी तोड़ क्या है, तोड़ मसले का हल क्या है। बहुत से लोग आमिलों के पास चले जाते हैं, ताजिश गंडे चिल्ले वजीफे जादू टोले उन चक्करों में पड़ जाते हैं। अरे जालिमो ये क्या कर रहे हो, तो जिंदगी और तबाह होगी, इससे और बर्बादी की तरफ राहें खुलेंगी। अल्लाह पाक ने मसाइब बल्लियात की वजूहत भी बता दी, मसले का हल भी बता दिया इस एक आयत में, और उसको तोड़ भी बता दिया ताकि तुम मेरी तरफ लौट आओ। दूर जा चुके हो मुझसे बहुत। क्या फरमा रहे हैं? क्या मतलब लौट डाले का क्या मतलब है? लौट डाले का मतलब होता है एक चीज हमसे दूर चली गई, इसको वापस बुला रहे हैं। गुनाह गुनाह जो होते हैं वो बंदे को अल्लाह से दूर करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं तुम मुझसे बहुत दूर जा चुके हो, गुनाहों में पड़ चुके हो, मेरे करीब आ जाओ। अब इसमें मसले का छुपा जाओ, अल्लाह की तरफ आएगा बंदा, लौट आएगा, तकवी की तरफ आएगा, अपने मामला अल्लाह से दुरुस्त करना शुरू करेगा, याद लाई में लगेगा, तो फिर अल्लाह खुशखबरी दे रहे हैं, फिर तुम्हारी जो मुसीबतें थी, जो तुम्हें तकलीफ हो रही है इन बातों से, उसको मैं ख़त्म कर दूंगा। ये है मसाइल का हल, ये है मसाइल का हल। हज़रत वाला रहमत इरशाद फरमाते थे, अगर कोई तकवी की तरफ आ रहा है फिर भी इसके साथ मसाइल चल रहे हैं तो अपने आप को मुत्तकी ना समझे। बहुत से लोगों के दिल में तकब्बुर आ जाता है, कहते हैं जी मेरे तो दाढ़ी भी है, मेरे तो टोपी भी है, मैं तो नमाज कुरान भी पढ़ता हूँ, मैं तो तकवी से भी रहता हूँ, फिर भी मेरे साथ मसाइल हल हो रहे हैं। तो हज़रत वाला रहमत इरशाद फरमाते थे, अल्लाह के वादों पर शक मत करो, अपने तकवे पर शक करो, ज़रूर तुम्हारे तकवे पर कहीं ना कहीं लफवा गिरा हो, ज़रूर तकवे मुत्तकी तुम हो, आगे हो तकवे पर। लेकिन अब बीवी बहुत से ऐसे गुनाहे कबीरा होंगे जिनमें तुम आदतन मुबतला, उसको तलाश करो, उसको दूर करो, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक परेशानी निकाल देंगे। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया वमन यत्तकिल्लाह यजअल्लहु मखरजा, जो शख्स तकवा अख्तियार करेगा मुसीबत से निकाल देंगे। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं तो अल्लाह की बातों पर शक करते हो, अपने ऊपर शक नहीं करते, अपने ऊपर को इतना पारसा मुत्तकी इतने ऊँचे मुकाम का बुजुर्ग समझते हो। नौज़बिल्लाह अल्लाह ने गलत कहा, लेकिन मेरा तकवा लोहा लाट है, हमारे अंदर ख़राबी नहीं है। नौज़बिल्लाह अल्लाह ने जो कहा शायद अल्लाह के वादों में कमी है। अरे भाई अल्लाह फरमा रहे कि अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। जब अल्लाह ने फरमा दिया मुसीबत से निकाल देंगे, अगर तकवे के ऊपर आओगे तो मुसीबत से निकाल देंगे तुम्हें, तो अल्लाह के वादों पर शक मत करो, बल्कि आदमी अपने तकवे पर शक करे। कहाँ गड़बड़े बैठे अल्लाह से दुआ मांगे, किसी गुनाह कबीरा उत्तर सगीरे की बात नहीं करता मैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया अगर तुम गुनाह कबीरा से बचोगे तो तुम्हारे सगीरा गुनाह उसकी बरकत से वैसे ही माफ़ कर देंगे। वज़ू हम करते हैं, नफली इबादत करते हैं और इस तरह से जिगर अस्कार करते हैं, इन चीज़ों से खुद ब खुद आटोमेटिक सगीरा गुनाह हमारे झड़ते रहते हैं, माफ़ होते रहते हैं। फोकस हमें करना है कबीरा के ऊपर, कबीरा किसी गुनाह में हम लोग आदतन मुबतला ना रहें। आदतन लफ्ज़ आदतन ये जहन में रखिए, इंसान है कोई अल्लाह वाला भी है, सच्चा मुत्तकी है, तो ख़ता उससे भी हो सकती है, गुनाह कबीरा उससे भी हो सकता है, तौबा कर ले। बस अल्लाह वालों में और आम लोगों में फ़र्क होता है, अल्लाह वालों से कभी को ख़ता होती है। हज़रत वाला फरमाते थे वो ऐसी तौबा करते हैं और अपनी ख़ताओं पे ऐसा रोते हैं कि इतनी बड़ी उन्होंने ख़ता नहीं की होती जितना वो रोते हैं। ये होते हैं अल्लाह वाले, जिससे अल्लाह का और उनको फ़ुर्ब हासिल हो जाता है। और आम जो आदमी लोग होते हैं वो आदतन हराम कामों में 10-10, 20-20 साल तक लगे रहते हैं और तौबा ही नहीं करते, या गुनाह कबीरा में मुबतला रहना, ये फिर परेशानियाँ फिर इससे आती हैं। और क्यों आती हैं भाई परेशानियाँ? मसला भी समझ लीजिए, बीमारियाँ। एक शख्स आया, उसने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे गुनाह कैसे कम होंगे, मेरे गुनाह कैसे कम होंगे, ज़रा और से सुनिएगा। अल्लाह के मीशी फरमाया, आपने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तुम्हारे तौबा इस्तग़फ़ार करने से गुनाह कैसे कम होंगे, सवाल था, जवाब दिया तुम्हारे तौबा इस्तग़फ़ार करने से। फिर उसके बाद दूसरे नंबर फरमाया तुम्हारे रोने से, फिर तीसरे नंबर पर इरशाद फरमाया बीमारियों से। अब इसमें नुक्ते वाला पॉइंट जो समझने वाला है, अब जो ना तौबा इस्तग़फ़ार करेगा गुनाहों पे, ना वो रोएगा, फिर बीमारियां आके उसको पाक करेंगी। मिल गया जवाब? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरे नंबर बीमारियों का नाम लिया, पहले नंबर पे बीमारियों को नहीं फरमाया। वही शान रहमत की वजह से इंसान है, नफ्स हमारा लनी हमारे साथ लगाए बैठ गए, नफ्स बहका दिया उसने, लेकिन जब अपनी हमने चला ली, नफ्स और शैतान को हमने आगे रखा, अल्लाह को हमने साइड में कर दिया, नफ्स और शैतान का गलबा हुआ और हमने अल्लाह की नहीं मानी, नफ्स और शैतान की मानी, लेकिन जब हमारी भड़ास निकल गई, हमने अपनी मानी अल्लाह की नहीं मानी, एक घंटे बाद, दो घंटे बाद, अगले दिन, दो दिन बाद, तीन दिन बाद, जब वो जोश भी अब नहीं रहा, तो भाई अब तौबों में क्या दे रहा है, तौबा तो कर लो। उस सब कह सकते थे शैतान का गलबा था भाई, अब तो नहीं है, अब तो प्रेशर दूर हो गया, अब क्यों नहीं एहसास हो रहा, बस फिर अल्लाह भी देख लेते हैं, ये मेरे बंदे चल मैंने माना उस वक्त तेरे ऊपर शैतान और नफ्स का गलबा था, तुझसे गंदा काम हो गया, गुनाह हो गया, लेकिन बाद में तो ये ख्याल आता हर वक्त नफ्स का गलबा हो गया, उधर 24 घंटे पता चला कि तू है ही बदमाश, तू चाह ही नहीं रहा मेरी तरफ रुजू करना, क्यों तौबा कर ली तो हजरत वाला फरमाते थे बाज़ लोग इसलिए तौबा नहीं करते कि अगर तौबा कर ली तो फंस जाऊंगा, अगले दिन को जो मौजूद उनका क्या होगा, फिर होशियारी तो फिर अल्लाह देख लेते हैं कि नहीं ये होशियार है बहुत, ये समझ तो गया ये सब कुछ है, लेकिन समझ के भी ये ना समझ बन रहा है, फिर अल्लाह पाक का तकवीनी निज़ाम हरकत में आता है, फिर को परेशानी, फिर को बला उसके ऊपर आती है, चाहे वो चाहे बीमारी की शक्ल में हो या किसी तंदुरुस्ती की शक्ल में हो या मखलूक की शर की वजह से हो, कोई दुश्मन बाज़ दफ़ा अल्लाह पाक पीछे लगा देते हैं, है ना, या फिर बाज़ दफ़ा कोई जादू टोना कर देता है, या जादू टोना अक्सर होता नहीं है, अल्लाह पाक कुछ नहीं तो वहम में उबतला कर देते हैं। इससे भी बड़े बड़े उलमा व शेख ने ये इसकी तफसीलात लिखी हैं कि बाज़ दफ़ा अल्लाह पाक अपने गुनाहगार बंदों को डराने के लिए सिस्टम ऐसा क्रिएट करते हैं जिससे पता चलता है जादू सीखनी है, जबकि खुदा की कसम कुछ भी नहीं होता। आमिर भी तस्दीक करेंगे आप पे हुआ है, लेकिन सिर्फ क्रिएशन होता है वो, अल्लाह की अल्लाह ने इसको सिस्टम ऐसा सजा के दिखाते हैं जिससे ये दिनों रात कांपता रहे, डरता रहे, कुछ नहीं तो घर के अंदर गोश्त पड़ा हुआ मिल जाएगा, दालें, अंडे रोज दरवाजे में उसको फड़े हुए मिलेंगे, वो थर थर कांप लेगा, यार ये रोज मेरे दरवाजे के आगे से ये फड़े हुए अंडे और गोश्त पड़े हुए मिलते, अब वो हाथ भी नहीं लगाएगा डर के हमारे, फ़ोन करेगा पता नहीं कहाँ का मुफ्ती साहिबान को, पता नहीं दीनदार लोग, यार मैं क्या करूँ, मैं हाथ नहीं लगा रहा और बदबू बहुत आ रही है। तो बात ये क्या, सड़े हुए गले हुए जो पुराने अंडे हैं उनसे तो हम डर गए, लेकिन अल्लाह से न डरे, जिन भूतों से डर गए अल्लाह से न डरे, जादू से डर गए अल्लाह से नहीं डरे, मखलूक से डर गए अल्लाह से नहीं डरे। उलमा और मशाइख अगर बुजुर्ग औली अल्लाह फरमाते हैं कि जो शख्स अल्लाह से नहीं डरता, जो शख्स अल्लाह से नहीं डरता यानी गुनाह करता रहता है, अल्लाह से ना डरने का मतलब है हराम काम आदतन करते रहना, ये अल्लाह का दिल में ना डर रखना है, ये मतलब हो। तो जो लोग अल्लाह से नहीं डरते तो उस पादाश में कि जालिम अल्लाह से नहीं डरता, फिर हर मखलूक हर चीज़ उसको डराएगी इस जुर्म की वजह से कि जालिम अल्लाह से नहीं डरता, और जो अल्लाह से डरता है कायनात की अर्शा उससे डरती है, कायनात की अर्शा उससे डरती है। ये ऐसी जज्बात में तकरीर नहीं कर रहा मैं, ये बड़े बड़े इसके ऊपर दलाइल हैं, क्योंकि चूँकि टाइम कम है और रोड़ मशाइख की किताबों में लिखा हुआ है। खुद हजरत मौलाना शबली थानी साहब रहमत इरशाद फरमाते हैं अपना वाक़िया, कहने लगे कि मैं एक जगह कहीं जा रहा था, थाना भवन खान पे करीब कोई जगह थी वहाँ, तो वहाँ बहुत तंग गली थी कोई, और इतनी तंग गली थी कि एक वक्त में दो आदमी मुश्किल से गुजरते थे, फंस के गुजरते थे, टकराते हुए रगड़ते थे एक दूसरे को, इतनी पतली गली थी, लेकिन वो शॉर्टकट रास्ता था कोई नहीं, तो घूम कोई और तो बड़ा लंबा पड़ता था, तो उसमें कुछ इस तरह का गली थी कुछ, तो हजरत जा रहे थे, अब वो कह रहे हैं मैं बीच, गली भी काफ़ी लंबी थी, तो कह रहे जब मैं बीच में सेंटर में पहुँचा गली के, तो अचानक देखा है कि उस इलाके में कोई पागल भैंसा था और बहुत खतरनाक, कई लोगों को मार चुका था, अपना सिंह पेट में घुसड़ के पेट फाड़ दिया करता, तो पागल था पता नहीं, और कभी कभी अचानक दौरान आता था और अपनी वारदात करके फिर गायब, लोग ढूंढते थे यार उसको मारे पकड़ के, जान छूटे वो फिर गायब। तो हजरत ने फरमाया कि जब मैं बीच के लिए पहुंचा देखा सामने से दौड़ता हुआ आ रहा है, तो हजरत ने फरमाया थोड़ा सा तबाही खौफ मुझे भी हुआ कि भाई अब मैं क्या करूँ, भाग भी नहीं सकता अब, तो दाएँ बाएँ दीवारें, जगह पतली, सामने साहब आ रहे हैं, है ना, और पीछे भागूंगा भी तो कैसे भागूँ। तो बस फिर अल्लाह का जिक्र शुरू कर दिया, अल्लाह से दुआ की अल्लाह तो ही बचाने वाला है, हसबुनल्लाह व नेमल वकील पढ़ना शुरू कर दिया। कहेंगे वो दौड़ दवा आया और फिर अचानक मेरे करीब आकर रुक गया वो, और फिर अचानक अल्लाह का फजल मैंने देखा, उसने अपना सर सीहू वाला जो दीवार थी वो उसके अंदर दे के टक्करें मारनी शुरू कर दी, और वो दीवार में अपना सर रगड़ना शुरू कर दिया उसने, जैसे कोशिश कर रहा हो कि दीवार फटे, जैसे खौफ होता देखा उसको, उन्होंने फर्मा ने देखा डर रहा है ये भैंसा, और उसने अपना सर दीवार में ऐसे टक्करे मार के रगड़ रहा है कि किसी तरह ये दीवार फटे और ये इसके अंदर घुस जाए। तो जब मैंने पोजिशन देखी तो मुझे दिल को मेरा तसल्ली हुआ, मेरा खौफ कम हुआ। तो फिर मैं उसके पिछाड़ी की तरफ से, पीछे की तरफ से फिर मैं बड़ी मुश्किल से निकला, और वो उसी तरह बदस्तूर अपना मुंह दीवार के अंदर घुसेड़ के उसमें कोशिश करता रहा जैसे ये किसी तरह दीवार फट जाए और मैं इसके अंदर चला जाऊँ। तो फिर मैं वहाँ से मैं निकला और मैं तेज तेज दौड़ता हुआ गया आगे। फिर मैंने काफ़ी आखिर तक चला गया, और जब मैं बहुत आगे चला गया, जब खतरा बिल्कुल ही डर गया, मैंने मुड़ के देखा तो वो भैंसों उसी तरह बदस्तूर दीवार के अंदर अपना सर घुसेड़ रहा था। तो इस तरह उन्होंने दरी जो गली थी वो पार कर ली। तो इसी तरह से कई वाक्य बुजुर्गों के भी हैं इस तरह से कि जो शर वाली चीज़ें होती हैं वो उनकी मुतकिद हो जाती हैं। जो अल्लाह से डरता है हर शय से डरती है। हज़रत मौलाना अब्दुल रशीद गंगोई रहमतुल्लाह का वाक्य है। तो जहाँ इन्होंने खानका बनाई थी वो एक हिंदुओं का इलाका था, और हिंदू पंडित जादूगर बहुत थे वहाँ। तो उन्होंने कहा अगर अपनी सलामती आप चाहते हैं तो यहाँ अपना बोरिया बस्तर आप ना शटअप बनाइएगा खानका वगैरह, नहीं तो आपको नुकसान पहुँचाएंगे। अब हुक्म रब्बी ही था कि ये जाके तबलीग करनी है दीन की, बैठ गए खानका पोल, लोग आने लगे माशाल्लाह। अब जादूगर अपने काम पे लग गए। तो खुली मजलिस में एक बार हज़रत ने देखा कि कुछ शैतान खड़े हैं। अब नज़र उन्हीं को ही आ रहा था, अब मुरीदीन को तो नहीं पता। तो उन्होंने फिर डांट के कहा हदीस हो क्या लेने आए हो यहाँ पर। अब लोग कह रहे हैं पता नहीं किससे बात कर रहे, उनको दिख रहे थे। तो उन्होंने कहा उन्होंने जिन्नात ने कहा शैतान ने हाथ बांध के अदब से हजरत करके मुखातिब किया, हजरत आप माफ़ी चाहते हैं, हमारा कसूर नहीं है, लेकिन हमारा जो बादशाह है, हमारा जादूगर जिसने हमें भेजा आपके पास, हम तो उसे बादशाह कहते, उसने हुक्म दिया कि आपको उठा के भी लेकर आए उसके पास। तो हजरत ने गुस्से में गाली दी, हदीस हो तुम्हारी हिम्मत है, मुझे हाथ लगाओ, आओ करीब मेरे, और कहने लगे कि मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ उस मलून खबीस को यहाँ भी मेरे पास लाके पटको, नहीं तो देखो मैं तुम्हारा क्या असर करता हूँ। तो कहा जी हजरत, और गायब। थोड़ी देर में देखा, अरे 5 मिनट नहीं हो रहे थे वो अपनी कुर्सी समीप वहाँ पर बैठा हुआ, और वो गालियाँ दे रहा अपने शैतानों को, खबीस हो तुम मेरे लोग हो गए, तुम इसकी बार रहे हो, मेरी नहीं मान रहे हो, बुलवाया मैंने तो तुमने इनके पास ला दिया, मुझे पटक दिया। फिर वो मुतखिद हो गया जादूगर, उनके आगे पैर पकड़ लिया, उसने कहा हजरत मुझे माफ़ कर दें, मुझे नहीं पता था आपका इतना बड़ा ऊँचा मुकाम। तो जो अल्लाह का हो गया, हदीस शरीफ है हमारे प्यारे हाफिज़ हुजा सदर मिर्शाद फरमाते हैं, जो अल्लाह का हो गया अल्लाह उसका हो गया, जो अल्लाह का हो गया, ये वो खानकाही या सूफियत की बात नहीं है, हदीस शरीफ असलम फरमाते जो अल्लाह का हो गया अल्लाह उसका हो गया। जब अल्लाह किसी का हो जाता है तो फिर ऐसी सी करामतें फिर ज़ाहिर होती हैं। जो अल्लाह का हो गया सब बताए शैतान, उसके हुक्म किसका मान रहे हैं, अल्लाह वाले बुजुर्ग का, उसको ला के पटक दिया उनके पास। तो बहुत ऐसे वाक़ियात होते हैं। फिर यही अब्दुल रशीद गंगोई रहमतुल्लाह का एक और वाक़ याद है, एक मुरीद थे। बाज़ लोगों को तमाशा देखने की आदत होती है ना, जैसे इस तरह एक लतीफ़ा टाइप याद आया, एक साहब को लतीफ़ वो तमाशा देखने का बड़ा शौक था। तो कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ था, कोई पत्नी का रश था, तो अपनी गाड़ी से उतरे और उन्होंने कहा मैं तो पहुँच नहीं सकता, आखिर हुआ क्या। जिससे पूछ रहे कह रहे हैं हमें भी नहीं पता यार, पत्नी रश है, देखा देखिए। अब उनको एक आदत होती ना उनको देखने की, कुछ ही तमाशा। अब कह रहे हैं रास्ता किस तरह बनाऊँ, तो जोर से नारा लगा रहा हटो 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 भाई, ये जिसके एक्सीडेंट हुआ मेरा भाई है। ऐसे तो सब ने जगह दे दिया, और शायद बेचारा भाई और रास्ता दे दिया, आगे तक आगे देखा तो गधा मरा हुआ पड़ा था। तो इसलिए भाई वो हर एक तो जो तमाशा देखना नहीं चाहिए, पता नहीं क्या चीज़ हो आगे चल के। बहरहाल ये तो मजाक की बात थी। तो इसी तरह इनके जो मरीज थे उनको भी शायद तमाशा देखने की आए थी, वो जा रहे थे बेचारे, तो उन्होंने देखा है गाँव में बहुत रश लगा हुआ है। उन्होंने कहा क्या क्यों रश लगा हुआ है, तो वो मजमे को चीरते हुए आगे तक चले गए और बिल्कुल फ्रंट लाइन पे आगे खड़े हो गए। पता ही चला कि हिंदू कोई जादूगर था, उसने कोई मट्टी के अंदर अपने आप को लगाया हुआ था पता नहीं 6 महीने से, जैसे कवर टाइप बना थे, और उसको जिस्म के ऊपर अपने राख मल ली थी, मसामे बंद कर लिए थे, और फिर जंतर मंतर जो भी उनके काले अमलियात होते वो 6 महीने से वो मट्टी के अंदर कर रहा था वो। उसके बाद अब उसको उनके बफौल के ताकत वाकत मिल जाती है, उनकी शक्ति वगैरह इनको मिल जाती है। तो जब बाहर आया वो तो हिंदुओं की अगर बहुत बड़े वो महात्मा बन चुका था, वो बहुत पावरफुल आदमी था बन चुका था, तो काले इनकी वजह से बाहर। अब उनको पता नहीं था वो तमाशे देखने की नहीं, आगे पहली बिल्कुल फ्रंट पे चले गए वो। तो जैसे ही जाके देखने लगे देखा बिल्कुल ऐसा लगा मट्टी का आदमी, मुश्किल से इतने कपड़े थे कि उसकी शर्मगाह बस ढकी हुई थी, बाकी ऐसे ही था वो। तो अब चूंकि वो काले इनका मायर था, उसको खुशबू आ गई, उनकी की किसी वही बात बुजुर्गों की खुशबू आ गई उस मुरीद से, तो वो भी एक नंबर का था बदमाश जादूगर। नीचे मुंह थे उसका पूरा मट्टी का आदमी लग रहा था, पर उसने गर्दन उठाई और अपनी आंख को पकड़ के ऐसी आंख खोली उसने, जैसी आंख खोली और डायरेक्ट उनको देखा उस मुरीद को, अपनी मगरब अब्दुल रशीद गंगोई रहमतुल्लाह के मुरीद को, जैसे ही देखा उनके कपड़े गायब।
हाँ
सिर्फ वो नेकर अंदर का पहने हुए थे, तो उस तरह उनका सतर छुपा हुआ रह गया। अब वो शर्मिंदा डर गए, ये क्या हुआ, अब वो भी हंसने लगा और सारे हिंदू हंसने लगे, अब उनके तो पसीने छूट गए कि अब क्या करूं। अचानक कानों में शेख की आवाज आई, हजरत मौलाना अब्दुल रशीद गंगोई रहमत, फरमाया क्या क्यों नहीं देता, हसबुनल्लाहु निमल वकील। जैसे ही उन्होंने ये कहा, फौरन कपड़े वापस दिए। होते बुजुर्गों के मामला ऐसी इज्जत रखी। तो फिर अचानक उसको पता चल गया, उस हिंदू को जादूगर को, उसने कहा लगता है तेरा गुरु भी बहुत तगड़ा है, लगता है तेरा गुरु भी यानी उस्ताद तेरा शेर जो भी है बहुत तगड़ा है। और फिर वो वहाँ से निकले, है ना। तो ये तो बहरहाल एक बात से बात निकली थी। तो जो अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके हो जाते हैं, और जो अल्लाह से डरता है हर शे उससे डरती है, हर शे उससे डरती है। को मुत्तकी अल्लाह वाला, कितने ऐसे हमारे बुजुर्ग गुजरे हैं, कितने ऐसे मशाइख गुजरे हैं, कहाँ तक नाम बताएं, सिर्फ उनका किसी घर में जहाँ पे शैतानी असरात हो उनका जाना हो तो एक तरह सिर्फ नाम बोल दे जाके कि अगर तुम लोग दो दिन के अंदर अंदर यहाँ से नहीं गए तो मैं फला बुजुर्ग अपने शेख का, ये मेरे शेख का नाम है, मैं उनसे जाके तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। और फिर दो दिन तो क्या, एक दिन की क्या, एक घंटे के अंदर अंदर पूरा घर साफ हो गया और बाकायदा आवाज़ आई कि भाई उनसे मत बोलना, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, उनसे नहीं बोलना। क्योंकि मुहामात पहचानती है ये चीज़ जो होती है शैतानी, उनको पता होता है कि कौन किस लेवल का आदमी है। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह का वाक़िया याद आया, एक शख्स आया उसकी बेटी के ऊपर जन्नात आते थे, तो आगे शिकायत करी, हज़रत दुआ फरमा दे, वक्त के वली भी थे, इमाम भी थे, बहुत बड़े आरिफ़ुल्लाह बुजुर्ग भी थे। तो उन्होंने कहा भाई तावीज़ बंदे तो मुझे आते नहीं, दुआ कर दूंगा। बहरहाल उसने कहा तावीज़ देना, उसकी ज़िद थी तावीज़, उन्होंने कहा मुझे तावीज़ लिखने आते नहीं, उन्होंने कुछ भी दे दें। उन्होंने बहरहाल पेन कागज़ लिया और उस पर कागज़ पर लिखा, मैं इमाम अहमद बिन हम्बल, ए खबीस मलून पलीत शैतान, मैं तुझे हुक्म देता हूँ फ़ौरन इनकी बेटी को छोड़ कर चला जा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। और मोड़ के उन्होंने नहीं पता मैंने क्या लिखा, बस ये कहा मैंने कुछ भी लिखा, इसको छोड़ो, इसको मोड़ के इसके गले में डाल दो और फिर बताना मुझे। पर अलहमदिल्ला उसको गले में डाला और वो चला गया, कहानी ख़त्म, बच्ची सही हो गई। थोड़े अरसे बाद ऐसा हुआ, हज़रत इमाम साहब रहमतुल्लाह का इंतकाल हो गया, वफ़ात हो गई, वो चीज़ फिर दोबारा आ गई, पता चल गया हज़रत तो चले गया दुनिया से, उसने फिर जकड़ लिया। तो वो दोबारा फिर आए और उनकी जगह पर देखा तो कोई दूसरे साहब बैठे हुए थे, तो उनको तफसील बताई कि मेरी बेटी के साथ ऐसा ऐसा मामला हुआ था और हज़रत ने ऐसे तावीज़ दिए था, लेकिन वो तावीज़ तो अभी भी गले में पड़ा हुआ, हज़रत का इंतकाल के बाद ये मसला दोबारा शुरू हो गया। मैंने कहा अच्छा, तो क्या लिख के दिए था, उन्होंने कहा वो तावीज़ दिया था, उन्होंने कहा लेकर आए, वो लेकर आए, पढ़ा तो यही लिखा था उन्होंने, उसकी कॉपी करके उन्होंने भी लिख दिया कि मैं फला 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 बिन फला तुझे हुक्म देता हूँ, तू छोड़ के चला जा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तो उन्होंने जाके जो है वो तावीज़ मोड़ा और गले में डाल दिया। और वो जो चीज़ थी उसने कहा कि उनको जाके बोलो अगर मैं उनके पास आ गया तो फिर अच्छा नहीं होगा। क्या मतलब कि भाई ये चीज़ें भी मुकाम पहचानती हैं, ये किसी की कोई नकल नहीं कर सकता, कॉपी नहीं कर सकता। और ये जो ट्रू लोग होते हैं ना मुत्तफ़ी वाकई, तो वो शैतान जिन्नात को भी पता होता है कि अगर इन्होंने हमारे खिलाफ़ अल्लाह के बारगाह में दो आंसू बहा दिए या अगर बद्दुआ के नहीं हाथ उठा दिए तो हम जिंदा जल जाएंगे, जिंदा जल जाएंगे। तो ये चीज़ें वो कहलाती हैं। तो फिर वो चीज़ गई नहीं, बारह फिर वल्लाह आलम बाद में क्या, वो बताने का क्या मकसद है कि शख्सियतें शख्सियतें होती हैं, कि शख्सियत देखी जाती है, किसका क्या मुकाम अल्लाह के नहीं है, किसके क्या मामलात अल्लाह पाक से चल रहे हैं, कहाँ तक बयान करें। सच्चे वाकयात में से एक आलिम भी है, मुफ्ती भी, अल्लाह वाले बुजुर्ग की किताब में पढ़ा, एक नौजवान था। इन चीज़ों को समझना है हमें, ये जो बातें ना ये सिर्फ मज़े की हद तक ना सुने बल्कि इनको इन अल्फाजों की बारीकियों को समझे। वह ये कि एक आमिल था, वो बहुत ज़बरदस्त आमिल था, जला दिया करता था शैतान जिन्नात पे अगर उसकी बात नहीं मानती, बहुत ज़ालिम सख्त आमिल था। वो है क्या, एक दफ़ा कोई सख्त भारी केस आ गया इसी के ऊपर, कोई जिन था बहरहाल बहुत 10-12 और कहते 18 घंटे हो गए थे, लेकिन मुकाबला बड़ा सख्त था, लेकिन आखिर में आमिल को फतह हासिल हुई और उसने जला दिया उसको। वह गया उसके जिन जो शैतान या जिन्नात जो भी थे, तो उनकी जो बीवी थी बेवा हो गई तो उसको बड़ा मलाल हुआ कि शामिल ने तो मार दिया मेरे शौहर को। उससे एक बच्चा पैदा हुआ था छोटा। फिर उसने कहा मैं इंतकाम लूंगी शामिल से। फिर अपने बच्चे को उसने बड़े जादूगरों के पास भेज दिया, जिन्नात के जादूगर अलग होते हैं, पहाड़ों में और जंगलों में भेज दिया और कहा इसको 20 साल तक अमलियात सिखाओ और इसको बहुत हाई क्लास शामिल बनाओ और फिर उसके बाद ये बदला लेगा अपने बाप का। सच्चे वाकयात में से बारह लोग 20-25 साल के बाद वो नौजवान बहुत बड़ा आमिल बन के जिन्नात में से बीबी था वो फिर आया और फिर उस आमिल के पास आया लिसानी शक्ल में उसके घर में और इजाज़त लेके आया ऐसी बहाने से कोई इलाज इलाज कराना है। उसने बैठाया बातचीत करी फिर उस जिन ने कहा कि तुम्हें याद है तुम्हारा आज को 25 साल पहले एक तुम जिन उतार रहे थे और बहुत सख्त था तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल केस वही था और तुमने उसको मार दिया था। उसने याद दिला कह रहा हाँ हाँ मुझे याद आ गया। कहेंगे तुम्हें कैसे पता? कह रहे उसको छोड़ो बतरा सुनो जिस जिन को तुमने जलाया था मैं उसी का बेटा हूँ और बताने आयो अगले महीने इस तारीख को इतने बजे मैं आऊँगा और तुझे जान से मार दूंगा। बताने आए हूँ जो तुझे करना है तू कर ले। आमिर भी बड़ा पहुँचा था तो और सीनियर हो गया था। उसने कहा तू जाएगा तो आएगा ना, फिर जाएगा तो आएगा ना, मैं तो तुझे जान ही नहीं दूंगा। उसने पढ़ाई शुरू करी वो भी कच्चा नहीं था, उसने फ़ौरन उसकी काट कर दी। इसी तरह करते करते काफ़ी देर हो गई, यहाँ तक कि उसने आमिर ने अपने तरकश के सारे तीर चला दिए, सारा इल्म दिखा दिया उसने, लेकिन उस पर फतह हासिल नहीं कर सका। फिर हंसने लगा कहने देख चाहो तो बीवी मार सकता हूँ तुझे लेकिन मारूंगा नहीं। बोल दिया एक महीने बाद इतने बजे तो बस जा रहा हूँ, ये कह के वो चला गया। अब तो भाई इसकी हालत गए क्योंकि उसने देख लिया कि मैंने तो अपना सारा दिन दिखा दिया, अब तो मौत यकीनी पक्की। अब वो बड़े बड़े अपने उस्तादों के पास अब पता नहीं किस किस के वो कहाँ कहाँ जा रहा है, रो रहा है पीट रहा है मुझे बचा लो यार ऐसे। तो सारे मामला तो उसने कर लिए लेकिन उसकी जान ना छूटे, उसका डिप्रेशन ख़त्म ना हो, मौत सामने नजर आ रही थी। उसके बाद 2 दिन पहले वो इसको पता नहीं कोई शख्स टकराया, उसको फ़ोन मिला, उसने बताया तो कह रहे यार देखो तुम्हारा मसला एक तरह से इंशाल्लाह हो जाएगा कि फ़ला एक मस्जिद है तो उसमें जाओ और वहाँ तुम एक असर की नमाज के बाद जाना, एक नौजवान लड़का होता है नौजवान बाशरा ये उसका नाम है, आसिफ उसका नाम है, और वो नमाज के बाद बिल्कुल कोने में पीछे तुम्हें बैठा हुआ मिलेगा जिक्र असकार में मशगूल, मालूम कर लेना ये उसका हुलिया है, उसको जाके बताना मसला तो इंशाल्लाह तुम्हारा मसला हो जाएगा। तो उसने कहा अच्छा बाहर वो चला गया और फिर उसने तलाश की मस्जिद पर मिल गया वो नौजवान। फिर नौजवान को पूरी तफसील बताई और रो रहा था तो उस नौजवान ने कहा भाई ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के अख्तियार में, किसी जिंदगी के देने से क्या होता जब तक अल्लाह पाक मौत नहीं देंगे आपको। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया मैं किसी ना कोई किसी को मार सकता है ना किसी को कोई ज़िंदगी दे सकता है, मैं ज़िंदगी और मौत का मालिक मैं हूँ, मैं ही मौत देता हूँ मैं ही ज़िंदगी देता हूँ। तो उसने कहा अपना अकीदा दुरुस्त रखें, मौत आ गई तो आप जाएंगे, नहीं आएगी मौत तो कोई मार नहीं सकता आपको। रही 2 दिन बाद जो आने वाला है उसको आप इतना बोल देना कि फला मस्जिद में आसिफ ने कहा है कि वो आपको माफ़ कर दे। अब गौर करने वाली बात है यहाँ पर, वो आमिल है बहुत, जिन्नात भी उसके पास हैं, कितने उसके अमलियात हैं, बहुत ख़तरनाक आमिल है लेकिन फिर, और वो जो नौजवान था वो आमिल नहीं था, तावीज़ गंडे वगैरह कुछ नहीं जानता इल्म, लेकिन उसने क्या कहा सिर्फ उसको मेरा नाम ले देना फला मस्जिद में आसिफ ने कहा है कि वो मुझे माफ़ कर दे, मैंने सिफारिश करी। उसको यकीन नहीं आ रहा, कह रहे तीसरी बात पे का छोड़ देगा मुझे, वो कह रहे आप उसको कह के तो देखना। बाहर वो बेयकीनी वाली कैसीत में चला गया। फिर वो 2 दिन बाद आ गया और फिर उसने कहा भाई तुझे कुछ कलमा वलमा पढ़ना है तो पढ़ ले, तेरा वक्त आ गया चूके। तो उसने कहा भाई कलमा तो पढ़ लूँगा लेकिन मेरी बात सुन लो। मैं क्या? उसने कहा भाई फला मस्जिद में आसिफ नाम का जो नौजवान है उसने कहा है कि वो तुम मुझे माफ़ कर दो, बस ये कहना था। कहते बढ़ते हुए कदम जो उसकी तरफ आ रहे थे एक झटके से रुक गया वो और फिर कुछ सोचने लगा। उसने कहा अब तो तुझे माफ़ करना ही पड़ेगा क्योंकि भाई वो अल्लाह वाला है सच्चा, वो नौजवान तो है लेकिन सच्चा अल्लाह वाला, अगर एक दफ़ा उसने मेरी शिकायत कर दी अल्लाह से, बद्दुआ की नियाद उड़ा दिए तो मेरी नस्लें तक तबाह हो जाएंगी, जा मैंने तुझे अल्लाह के लिए माफ़ किए और वो गायब। तो यहाँ वो बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि इस सच्चे वाक़े से इबरत हासिल करो कि तख्वा क्या चीज़ होती है, अल्लाह से ताल्लुक़ क्या चीज़ होती है, कि बड़े बड़े आमिल कामिल जिन्नात भी कदमों में आके बैठते हैं, जो अल्लाह का हो गया अल्लाह उसका हो गया और अल्लाह जिसका हो जाता है सारी मखलूक़ात भी उसकी हो जाती हैं, सारे जिन्नात उसके हो जाते हैं, सारे जिन्नात उसके हो जाते हैं। आज तो हमारे हम लोग आज जो हम परेशान हैं, 2 रोटियों के लिए परेशान हैं भाई, 2 रोटियाँ ये हमें हासिल नहीं हो रही सही तरह से, वजह क्या है? कि ताल्लुक मा अल्लाह में कमी, अल्लाह से जैसा हमारा ताल्लुक होना चाहिए वैसा नहीं है। नमाज तो हम पढ़ते हैं माशाल्लाह, दीन पे भी हम चलते हैं, अल्लाह की मोहब्बत भी रखते हैं, लेकिन भाई जैसा ताल्लुक होना चाहिए वैसा नहीं रखते हम लोग। और कैसा ताल्लुक होना चाहिए, जैसा रखना चाहिए, गुनाह से नहीं बचते, गुनाह 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 बार बार ये कहता रहता हूँ। नेक अमाल करने हैं, गुनाहों को छोड़ना है, खास तौर पर नजरों की हिफाजत करें, क्योंकि इससे दिल को बहुत तकलीफ मिलेगी, बहुत गम मिलेगा, दिल के परखचे उड़ेंगे। नजरों की हिफाजत करें। इसी तरह हर हर गुनाह के अंदर जिसकी ज्यादा दिलचस्पी हो, हर आदमी का गैरुल्लाह अलग है, हर इंसान को पता है कि मुझे कौन सा गुनाह मरगूब है, बस अपने उस गैरुल्लाह को पकड़े, तलाश करें, ढूंढें, बस जिसको जिस गुनाह से ज्यादा मजा आता हो वही उसका सबसे बड़ा गैरुल्लाह है, उस बुत को गिराए गुनाह के, वहीं से उसको इंशाल्लाह अल्लाह मिलेगा। किसी को, बहुत से लोगों को शहवत परस्ती की तरफ इतना ध्यान नहीं होता, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम है, ज्यादातर तो हुब्बे बा वाले मामला होते हैं शहवत परस्ती के, लेकिन कुछ लोग होते हैं बाज़ लोग, उनको इतनी औरतों की तरफ मिलान नहीं होता, उनको जो हुब्बे बा गैरुल्लाह है वो माल होता है, चाहे जुए से आए, चाहे प्राइस बॉन्ड से आए, चाहे सूद से आए, चाहे रिश्वत से आए, चाहे हराम से आए, चाहे किसी को मार के आए, धोखा दे के आए, फ्रॉड करके आए, पैसा आ जाए बस, तो उनके अंदर शहवत नहीं, उनके अंदर जो फख्त उनका जो गैरुल्लाह वो फिर पैसा है, तो गलत नाजायज से बचेंगे तो उससे उनकी चीखें निकलेंगी, तकलीफ होगी उनको, बस वहां से उनको खुदा मिलेगा। हर एक का गैरुल्लाह अलग है, तो बस अपना गैरुल्लाह चेक करें, कौन सा किसके अंदर किस कौन सी चीज का शिद्दत का मादा है गुनाह की, बस वही सबसे बड़ा गैरुल्लाह है, उसको निकाल के बाहर फेंके, फिर अल्लाह ही अल्लाह नजर आएगा इंशाल्लाह ताला। तो भाई अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करें, बहुत मजा आता है जीने में, जीने में भी मजा आएगा, जीने का रंग बदल जाएगा, वो जमीन भी अलग नजर आएगी, आसमान अलग नजर आएगा, लगेगा इंसान किसी और सैयारे के ऊपर आ गया। ये मैं खुदा की कसम खा के बात कर रहा हूँ, ये बात अल्लाह को गवाह बना के बात कर रहा हूँ। एक फासिफाना जिंदगी जब इंसान गुजारता है, उस वक्त के शब रोज जमीन और आसमान, खाना पीना, घूमना फिरना कुछ और होता है। जब ताल्लुक मान लो एक बार हम हासिल करें, फिर उसके बाद वही चीजे, वही डिशेज, वही खाना पीना हम खा के देखें, वही जमीन और आसमान देखें, वही लोगों से मिले, तो आपको जमीन और आसमान का फर्क लगेगा अपनी जिंदगी में। अब ना वो जमीन रहा, ना वो आसमान रहा, तूने जमाना बदल दिया आके मेरी निगाह में, एक बुजुर्ग ये फरमाते हैं, अब वो जमीन रहा, जमीन रही, ना आसमान रहा, तूने जमाना बदल दिया आके मेरी निगाह में। सब कुछ बदल जाता है, बगैर सब कुछ वही होता है, लेकिन सब कुछ बदल जाता है क्योंकि बंदे का दिल बदल चुका होता है। जब दिल बदलता है तो सब कुछ बदल जाता है, देखने का अंदाज बदल जाता है, सोच का अंदाज बदल जाता है, चलना फिरना, उठना बैठना, बातचीत, सारी चीजें बदल जाती है, मिजाज बदल जाता है जब ये दिल बदलता है। दिल ही तो नहीं बदलता, इतने बुजुर्गों ने शार भी लिखे, मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, क्या था, दिल ही तो नहीं बदलता, दिल वही का वही रहता है, हम उलिये भी बदल लेते हैं, अमाल भी बदल लेते हैं, लेकिन दिल नहीं बदलता। तो मशायख जो होते हैं दिलों पर मेहनत करते हैं, दिल बदलता है तो फिर सब कुछ बदल जाता है। अल्लाह जल्दा जल्दा तो बहुत मजा आता है, कसम उठाने की जरूरत नहीं है भाई, लेकिन बार बार दिल से कसम आती है निकल के, काश कसम उठा के कहता हूँ ये बात, अल्लाह से ताल्लुक मामला हासिल करके देखें, तपे से रह के देखें, गम उठा के देखें, गम हसरत उठा के देखें, यानी गुनाहों से बचने का, तकलीफ होगी, लोग लानत मलामत भी थोड़ी बहुत करेंगे, मुखालफत भी होगी, लेकिन फिर अल्लाह पाक एक लज्जत ऐसी अता फरमाएंगे जिसको आदमी जुबान से बता ही नहीं सकता, सुकून अता फरमाएंगे, चैन अता फरमाएंगे। अगर किसी को नहीं मिल रहा तो वही बात, अपने तखवे को देखें, कहाँ तखवे पे लकवा गिरा हुआ है, कहाँ गड़बड़ है। जैसे किसी इलेक्ट्रॉनिक दुकान के ऊपर हम जाते हैं ना, कंप्यूटर में खराबी हो जाती है, तो सबसे पहले वो मीटर लाके चेक करता है हमारी पावर सप्लाई को कि करंट आ रहा है नहीं आ रहा, कहते नहीं यार पावर सप्लाई में तो करंट आ रहा है, फिर आगे देखता है कहता वो अच्छा यहाँ से जो है वो करंट जो है आना रुक गया, आगे फ्लो नहीं हो रहा, जो ये आपका कंप्यूटर ऑन नहीं हो रहा, अब वो एक रेजिस्टेंस या कोई आईसी चेंज कर देगा तो करंट फ्लो हो जाता है, तो करंट की सप्लाई लाइन बहाल नहीं हो रही थी, इसलिए जो सिस्टम था ऑन नहीं हो रहा था। तो यही मामला होता है बिल्कुल, तखवे में कमी की वजह से हमारा सिस्टम जो रूहानी चीज़ों का ऑन नहीं हो रहा होता, अल्लाह वाले उसको चेक करके बता देते तुम ये गलती करो, यहाँ से तखवे की सप्लाई रुक गई है, उनकी सोबत से दुआओं से वो चीज़ क्लियर होती है, तखवे की राह हमवार होती है, तखवा हासिल होता है, सप्लाई लाइन शुरू होती है, उसके मामला दुरुस्त हो जाते
हैं माशाल्लाह।
यही बस, तो ये आसान लफ्जों में इसकी तशरीह कर दी, तो मायूस ना हो आदमी, ना उम्मीद ना हो, बल्कि अपने तखवे की तरफ आए, देखिए कहाँ गड़बड़ कर रहा है, फिर इसलाह कराए शेख से अपने किसी गुनाह की, इसलाह कराने से मसाइल हल होते हैं, बयान में आना बयान सुनना मुबारक तो है, लेकिन भाई इल्म में वाफा हो गया, गुना नजर आ रहे हैं तो गुना की इसलाह आदमी कराए ना, ताकि गुना जिंदगी से निकले। गुना जब तक नहीं निकलेंगे, खाली बयान सुनने से भलाई थोड़ी खत्म होगी। बयान सुनने से तो इंफॉर्मेशन हासिल हो गई, नॉलेज हासिल हो गई, इल्म हासिल हो गया, अल्पी जमीन नरम हो गया। अब इसलाह कराओ, इसलाह गुना की गुना निकला, अल्लाह का प्यार मिलेगा, मुसीबत से अल्लाह निकाल देंगे, मसला हल। अगर इसलाह नहीं कराई, आदतन छुप छुप के गुना करते रहे, शर्माते रहे, शेख के आगे यही भी बने रहे, नाक ऊंची करके रखी, तो क्या होगा फिर? ये तो बला और मुसीबत के दरवाजे खोलने का रास्ता है। फिर अल्लाह कहेगा जा तो रहे, इसलाह ही नहीं करा रहा, रमजानी में बैद भी हो गया, 5 साल बैद हुए हो गए, 5 साल में कभी एक दफा भी शेख से इसलाह नहीं कराई कि मैं छुप छुप के गुना करता हूँ। फिर अल्लाह पाक बराह रास्त इसलाह करते हैं। फिर वही बात, जब अल्लाह पाक बराह रास्त इसलाह करते हैं तो बाप दफा चीखें निकल जाती हैं। तो भाई क्यों हम तकलीफ दे वाला रास्ता इंतखाब करें? प्यार मोहब्बत से अच्छे वक्तों में अगर कोई गुनाह ऐसा है जो कोशिश के बावजूद हमसे नहीं निकल रहा, तो उसको इसलाह कराएं। मुझे 25 साल हो गए बुजुर्गों की सोबत में रहते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह ये तीसरे शेख के साथ जिंदगी अल्लाह पाक गुजरवा रहे हैं। 25 साल से मैं कुछ ना कुछ जरूरत से अपनी इसलाह कराता रहता हूँ। भाई हम तो नहीं समझते अपने आप को गुनाहों से बिल्कुल पाक साफ हो गए, नहीं, मौत तक इसलाह होगी, इसी पे अल्लाह का प्यार मिलता है। अपने आप को किसी स्टेज पर इसलाह ना कराने का क्या मकसद है कि इंसान अपने आप को मुत्तकी अल्लाह वाला और पाकीज़ा समझ रहा है कि तो हम इतने बड़े हो गए कि हमें ज़रूरत नहीं है किसी से जाके हम अपने गुनाहों की इसलाह करवाएं, तो फिर अल्लाह पाक की तरफ से पकड़ आती है। तो जो आदमी इसलाह के प्रोसेस में लगा रहता है तो अल्लाह की शान रहमत के दायरे में रहता है, फिर उस पर बलाएं मुसीबतें परेशानियाँ वगैरह फिर उस पर इतनी नहीं आती। इसलिए अकलमंदी का तकाजा ये कि गुनाहों के बार को अपने ऊपर ज़्यादा आने ना दे, जमने ना दे, क्योंकि जब ज़्यादा गुनाहों का बार होता है तो फिर अल्लाह पाक उसको कम करने के लिए मसाइल भेजते हैं। अब परेशानी क्यों भेज रहे हैं? अब देखिए बयान कहीं से भी निकल जाता ना, फिर दोबारा अल्लाह ने वहीं से ताल्लुक जोड़ा, सिलसिला जहाँ से टूटा था। ये अल्लाह की भाई होती है, हम सोच को तो नहीं बोलते, अल्लाह ही बयान करवाते हैं, वही मज़मीन भेजते हैं। तो फिर जहाँ मैं भूल गया था दोबारा याद आया कि बात यहाँ से बीच में शुरू हुई थी कि अल्लाह क्यों भेज रहे हैं मसाइल। अल्लाह को पता है शान रहमत छुपी है, कैसे अल्लाह को पता है 102 बुखार भेजूँ, भेज देता हूँ उसके ऊपर मैं, तो ये थर थर कांपने लगता है, इतना तो कमज़ोर है ये नन्ना काका, 102 बुखार इसे बर्दाश्त नहीं होता, परेशान होने लगता है, शिकवे शिकायतें करने लगता है, रोने गाने लगता है, बिल्कुल ही बावला सा हो जाता है। तो अल्लाह को पता है 102 बुखार इसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो फिर जान निकलने की तकलीफ, मौत की तकलीफ, कब्र और हशर के मामला कहाँ से भुगतेगा ये? तो अल्लाह की शान रहमत है, अल्लाह पाक उसको फिर पाक करते हैं गुनाहों से, कि जो भी बला मुसीबत परेशानी है दुनिया में भुगत ले, क्योंकि दुनिया में कितनी बड़ी को परेशानी आ जाए आखिरत के अजाब से बहुत ही हल्की हो, तो अल्लाह पाक उसको मजबूरन परेशानियों बलाओं में मुबतला कर रहे हैं कि वो तकवी की तरफ नहीं आ रहा, गुनाहों की तौबा नहीं कर रहा, पाक कर रहे हैं। क्यों? ताकि मौत तक पाक हो जाए, ताकि बिल्कुल गुनाहों से पाक साफ हो जाएगा, तो फिर जब मौत का वक्त आएगा तो फूल की तरफ उठा के बराह रास्त इसको जन्नत में डाल देंगे, ना कोई अजाब खबर, ना मौत की तकलीफ, ना कोई बीच में कोई रुकावट, सीधे जन्नत में जाए इश्क। तो समझ में आई, तो ये भी शान रहमत छुपी हुई है भाई, कि अल्लाह पाक ये आफिस लंबी गदी से पाक। एक शख्स आया, नया नया मुसलमान हुआ था, तो उसने कहा औरत आफिसम के बाद आके यार असलम एक अजीब वाक्य हुआ, एक औरत थी ऐद जाहिलियत में, मैं उसका दीवाना आशिक था, बहुत हसीन थी वो, अच्छी तो मैं इस्लाम लेकर आ गया और बदनजरी हराम है, वो सामने से आ रही थी, लेकिन वही बात कि चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से न जाए, पुरानी आदत थी, कहेंगे कहेंगे यार असलम, मैं उसको देख रहा था और देखने में इतना मैं गुम हो गया कि आगे मैंने ये भी नहीं देखा कि दीवार आ गई, या पत्नी कोई चीज़ थी वो शख्स टकरा गया बुरी तरह, तो वो शख्स टकराया तो उनकी पूरा गाल वाल छिल गया, फट गया, कुछ खून आने लगा, तो आप सब से जाके अपनी इसलाह करा रहे, सब मेरी नहीं दुआ फरमाते, अल्लाह मुझे हिदायत दे दे और ये इन गंदी चीज़ों से मेरी हिफाजत फरमाए बदनजरी वगैरह से। अब जवाब सुनिए, आपने इरशाद फरमाया मनफूल है, अल्लाह बीच में फरमाया कि याद रखो जिस पर अल्लाह का फजल होता है उसे दुनिया में नकद सजा दे दी जाती है। क्या मतलब? जिस पे फजल होता है दुनिया में नकद सजा, आखिरत के लिए कोई बैलेंस नहीं, कोई नहीं, अल्लाह पाक ने बैलेंस रखा। लेकिन भाई हम कमज़ोर हैं, अल्लाह से हमें ये कहना है अल्लाह ना तू दुनिया में कोई नकद हमें सजा दे ना मरने के बाद, अल्लाह हम बहुत कमज़ोर हैं, वाफू अन्ना वफ़िर लना वरहमना, अल्लाह तू हमें बख्श दे, माफ़ फरमा दे, हम पर रहम फरमा, बस अल्लाह खताए हो गई हमें माफ़ कर दे, हमें ये कहना है, ताई सोचने, और ना हमको उस तरह से आजमाना जिस तरह से हमसे पहले लोगों को आजमाया था। अल्लाह हम तेरी आजमाइश के काबिल नहीं है, अल्लाह आजमाइश तो तू अपने नेक और बड़े लोगों की करता है, अल्लाह हमारा तो कोई ईमान यकीन ही नहीं है, हम तो कुछ है ही नहीं, अल्लाह आजमाइश तू हमारी क्या करेगा? तो इस तरह अपनी ज़ात की नफी करे, छोटा बन के रहे तो छोटा बनने में मज़ा है, बहुत से फितरों से और परेशानियों से बचा रहेगा। और जो पकड़ आती है, हजरत वाला फरमाते थे बड़ा बनने पर आती है, दावे के ऊपर आती है, मैं बहुत मुत्तकी, मैं बहुत अल्लाह वाला। अरे आजमाइशें तो आती हैं, वो तो अल्लाह ने कुरान में कहा, अल्लाह कहने अच्छा बहादुर बन रहा है तो ले पे। तो आदमी बहादुर ना बने, छोटा बन के रहे, आजी के साथ रहे, दावे ना करे, भले अल्लाह ने कहा हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे, तो अल्लाह से कह दे अल्लाह मैं कमजोर हूँ, अल्लाह मुझे ना आजमा। क्या अल्लाह अपने कहावे को, अपना कही बात के ऊपर क्या अल्लाह रिवर्स नहीं हो सकता? हजरत वाला फरमाते थे एक एक जज अपने कानून का पाबंद होता है, कि कहेगा मैं ऑर्डिनेंस के खिलाफ नहीं आ सकता जो बुक में लिखा हुआ है। जो जज है अपने कानून का पाबंद है, लेकिन अल्लाह अपने किसी कानून के कोई पाबंद नहीं, जो चाहे लिखे तकदीर में, जो चाहे मिटाए, क्योंकि जज के ऊपर उसको पूछने वाले मौजूद हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, बुक के खिलाफ क्यों गए। लेकिन अल्लाह के ऊपर कोई दूसरा खुदा नहीं है जो अल्लाह से पूछे कि अल्लाह पाक आपने तो ये कहा था, आपने माफ़ कैसे कर दिया उसको। दलील एक हदीस शरीफ में सल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक ने हमें बात कहलवाई है कि मेरी रहमत और मेरे गज़ब में दौड़ हुई, मेरी रहमत और मेरे गज़ब में गुस्से में दौड़ हुई, मेरी रहमत आगे निकल गई, मेरी रहमत आगे निकल गई। तो इसमें हजरत वाला और हमारे प्यारे मुर्शिद रहमतुल्लाह ने बहुत ही प्यारी तशरीह फरमाई कि अल्लाह हजरत की कब्र को नूर से भर दे, कि वजह आ जाए उन अल्फाजों पर। हजरत फरमाते थे कि देखो अल्लाह ने ऐलान कर दिया, जो मेरे कानून से नहीं बख्शा जाएगा वो मेरी शान रहमत से बख्शा जाएगा। कानून अलग चीज़ है, शान रहमत अलग चीज़ है। हदीसों मुबारक में भरे पड़े हैं वाकयात, बड़े बड़े गुनाहगार लोगों को अल्लाह पाक ने बख्श दिया अपनी रहमत से, और बाज दफ़ा किसी बड़े बड़े दीनदार अल्लाह के वलियों को भी बाज दफ़ा ज़रा सी एक बात से पढ़ के जन्म रसीद कर दिया, और जिनके बारे में तफ़व्वुर नहीं था कि शख्स जन्नत में जाएगा, अल्लाह ने उसको बख्श दिया। बड़े बड़े मुजरिमों को अल्लाह ने बख्श दिया। तो इसलिए कोई नेक आदमी भी, मुत्तकी आदमी भी नाजा ना हो कि मैं बहुत बड़ा अल्लाह वाला मुत्तकी हूँ, कुछ नहीं पता किसके साथ क्या हो, और किसी को अखीर ना जाने, कुछ नहीं पता कोई कितना ही फासिक फाजिर जलील गिरा हुआ हमें नजर आ रहा हो, पता नहीं इसका खात्मा कैसा, और अल्लाह उसको बख्श दे। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाह ने गालिबन शौक़ के वतन किताब में लिखा हवालों के साथ कि बाज़ जन्नत में ऐसे ऐसे लोग पहुँचेंगे कि बाज़ जन्नती इनको देख के कहेंगे इस तरह से, अबे तू और यहाँ इस तरह से जो है तू चीखे निकल जाएंगे जन्नती होगी, ये तफव्वुर में नहीं होगा, ऐसा शख्स ये हमारे साथ ये जन्नत में, इसको भी इन्होंने बख्श दिया। तो भाई अब क्या कहने उसकी रहमत की, ठीक है ना। तो इसी तरह बाज़ बेचारे जो नए लोग हैं वो भी बख्श जाएंगे। तो इसलिए जब तक खात्मा ईमान पर नहीं हो रहा, इसलिए अल्लाह वाले फरमाते हैं अपने को अच्छा मत समझो, कुछ नहीं पता किसका क्या हशर होने वाला है, और किसी को हकीर मत समझो, पता नहीं अल्लाह उसको बख्श दें और हमें पकड़ लें। अल्लाह की रहमत के बड़े बड़े फैसले होते हैं इसमें। एक शख्स होगा अल्लाह पाक जहन्नम रसीद करने का फैसला करेंगे, अहादीसों मुबारक में मनफूज है, अल्लाह को किसी को फरमाएँ, अल्लाह फरमाएंगे जाओ जहन्नम में, और फरिश्तों कहेंगे उसको बिल्कुल लेके जाओ और इसको जहन्नम रसीद करो, इससे पहले फरिश्ते पकड़े वो खुद रेस लगा देगा जहन्नम की तरफ। अब अल्लाह को तो सब पता है, हमें समझाना था, अल्लाह उसको बुलाएंगे कहेंगे इधर आ, कहेंगे मैंने तुझे जन्नत में भेजा, ऐसा दौड़ के स्पीड में क्यों जा रहा था, लोग तो डरते हैं जन्नम से, तूने फरिश्तों के पकड़ने का भी इंतजार नहीं किया, तो ऐसे तो दौड़ के जा रहा जैसे तुझे जन्नत में भेजा, तो खुशी से दौड़ के क्यों जा रहा था। तो वो जन्नम ही रोते हैं, कहेंगे अल्लाह पाक सारी ज़िंदगी आपकी नहीं मानी, पूरी ज़िंदगी नफ्स और शैतान की मानी, और इसी हालत में मेरी मौत आ गई, अल्लाह पाक अब तूने दिल में आया, अल्लाह ने अब तो अल्लाह की मान ले, जीते जी नहीं माना, मरने के बाद अब हशर वाले दिन अल्लाह एक हुक्म दे रहे हैं तुझे, कम से कम ये तो मान ले जन्नत में चला गया, तो दौड़ के इसलिए जा रहा था एक बात तो अल्लाह की मान लो। तो अल्लाह को उसी वक्त प्यार आ गया, रहम आ गया, फरमाया जाओ तुझे भी बख्श दिया मैंने। तो भाई इस अल्लाह के क्या कहने, क्या कहने इस रब्बुल आलमीन के, क्योंकि कैसे कैसे ऐसे ऐसे वाकयात होंगे, अल्लाह पाक को हंसी भी आएगी बाज लोगों के अमाल संतो। एक हदीस पाक का खुलासा मनपूर है, अल्लाह के विषय में फरमाए तो अल्लाह पाक उसको पहले वो कांप रहा होगा, डर रहा होगा, अल्लाह पाक उसे नामाए माल देख के कहेंगे नालायक तूने ये भी किया था, ये भी किया था, अब वो शर्म की ऐसे चुप रो रहा होगा, कांप रहा होगा, क्या अल्लाह की तजल्ली मामूली नहीं होगी अल्लाह पे सामने खड़ा होकर। फिर उसके बाद जो है वो कुछ इस तरह का फैसला होगा, तो अल्लाह पाक फरमाएंगे कि रहम आएगा अल्लाह को, कोई बात ऐसी होगी तो कुछ बोल रहा हूँ, अल्लाह के विषय में फरमाए तो अल्लाह फरमाएंगे जा जितने तेरे गुना उन सबको मैं नेक अमाल में तब्दील कर दूंगा। तो फिर वो अल्लाह फरमाएंगे कि ये गुनाह तूने किया था, ये गुनाह किया था, फिर अल्लाह पाक खामोश जाएंगे, फिर उसकी इतनी ज़रूरत बढ़ जाएगी, अल्लाह कहेगा अल्लाह पाक आपके नवाज़ में शायद पूरी बातें नहीं लिखी, मैंने ये भी तो गुनाह किए थे, मैंने ये भी किया था, मैंने ये भी किया था, मैंने ये भी किया था। तो फिर उसकी बात सुन के अल्लाह को हंसी आ जाएंगी, यानी इस बात पर हंसेंगे देखो ज़रा सा मैंने इसको फ्री किया तो इससे फैलिए भी तो रो रहा था दहशत से, मैंने शान रहमत दिखाई तो इतनी ज़रूरत बढ़ गई, कह रहे अल्लाह पाक ये भी गुनाह किए थे ताकि मुझे अब उसको भी तब्दील करें नेक अमाल में ताकि जल्दी जन्नत में जाऊँ मैं, फिर अल्लाह पाक उसको भी बख्श देंगे, माफ़ फरमा देंगे। तो ये जो आजजी है ना, आजजी ये बड़ी सिफत है, ये दुनिया में हम अपने अंदर लेकर आए, तकब्बुर से बचे। जो तकब्बुर है ना, ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, ये आदमी कहीं को कहीं का नहीं छोड़ती। और मुतकब्बिर आदमी जज्ब भी नहीं होता। अल्लाह पाक बहुत कम लोगों को अपनी दोस्ती और ताल्लुक मानना अता फरमाते हैं। मशाइख फरमाते हैं जानी शराबी हो चल जाएगा, मतलब वो उसकी इसलाह आसानी से हो जाएगी, जल्दी जज्ब हो जाएगा वो। लेकिन एक आदमी जानी शराबी तो नहीं है, लेकिन मुतकब्बिर बहुत है, अकड़ बहुत है उसके अंदर, तो उसमें उसको बहुत टाइम लगेगा। इसलिए मशाइख को जो चिड़ होती है मुतकब्बिर लोगों से बहुत होती है, क्योंकि ये अल्लाह के रास्ते का बहुत बड़ा हिजाब है, बड़ा मजबूत बूत है, लेकिन गिर जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, मायूस आदमी ना हो। तीन चीज़ें होती हैं जो अल्लाह के रास्ते का हिजाब है, जिसकी वजह से आदमी वलीउल्लाह नहीं बनता। वो कौन सी होती हैं भाई? पहला होती है उब्बे बा, शहवत परस्ती का गुनाह, जो ये बुद्ध भी गिर जाता है। दूसरा है उब्बे उब्बे माल, माल की मोहब्बत, हराम, जैसे भी बताया था कि हराम आए, हलाल आए, प्राइस, बॉन्ड, सूद, रिश्वत और पैसा आए, तो ये भी कंट्रोल में आ जाता है जब बुजुर्गों की सुबत में आता है, बैत होता है, इसलाह कराता है, ये बुद्ध भी गिर जाता है गैरुल्लाह। तीसरी चीज़ जो बड़ी ख़तरनाक है कि वलीउल्लाह बनने के बाद यानी ताल्लुक मोहल्ला हासिल हो गया, नस्बत मोहल्ला हासिल हो गई, कुतुब बन गया आदमी, अब्दाल बन गया, वलीउल्लाह बन गया, विलायत अता होने के बाद आखिर में जो चीज़ रुख्सत होती है, वो तीसरी चीज़ जो सबसे ख़तरनाक है, वो है हुब्बे जा। हुब्बे जा क्या कहलाती है? तकब्बुर, अपनी बड़ाई, मैं ऐसा, मैं वैसा, मेरा घर ऐसा, मेरा बंगला ऐसा, मेरी गाड़ी ऐसी, मेरा पैसा ऐसा, मेरा हुस्न ऐसा, मेरी डिग्री ऐसी, मैं ऐसा, मैं वैसा, और लोगों को हकीर समझना शुरू कर दे, तो ये कहलाती है उब्बे जा, मेरा मनसब, मेरा ओहदा ऐसा। तो अपनी किसी सिफत पर तकब्बुर ना करे, अगर अल्लाह ने कुछ सिफात दे दी हैं तो शुक्र अदा करे। मशाइख फरमाते हैं शुक्र और फ़ख्र ये एक साथ कल्ब के अंदर जमा नहीं हो सकती। जब फ़ख्र होगा, तकब्बुर होगा, तो शुक्र नहीं पैदा होगा। तो शुक्र करेगा आदमी नेमतों को, तो तकब्बुर पैदा नहीं होगा। तो इसलिए मशाइख फरमाते हैं अल्लाह ने अगर नेमतें दी हैं तो उसको शुक्र में लगा लो, नहीं तो तकब्बुर में आ जाओगे। दोनों चीज़ें कल्ब के अंदर नहीं रह सकती। ठीक है भाई, अल्लाह चिल्ला बस बयान दोषी पर महफूज करते हैं। अल्लाह पाक हम सबको कामिल तक़वा नसीब फरमाएं, अल्लाह से सही ताल्लुक अता फरमाएं, बबरकत तक़वा गुनाहों से बचने की इन सबको तौफीक अता फरमाएं, और जितने भी इनामात तक़वा हैं हमें अल्लाह पाक दुनिया और आखरत में दोनों जहाँ में हम दोनों हम सबको अता फरमाएं। आखिर में व्रत वाले अहमद इरशाद फरमाते थे पाँच अमाल बयान कर दिए पर बहुत ज़रूरी है, पाँचों अमाल का ताल्लुक जो है फ़राइज़ और वाजिबात से, और कोई भी शख्स उस वक्त तक इंशाल्लाह मरेगा नहीं जब तक अल्लाह पाक उसको अपनी दोस्ती अता नहीं फरमाएंगे। पहले वलीउल्लाह अल्लाह पाक बनाएंगे, विलायत अता फरमा के फिर उसको अपने पास बुलाएंगे। ये मतलब भी नहीं भाई कि आज वलीउल्लाह बनाया कल बुला दिए, बस ये मतलब नहीं, मतलब इंशाल्लाह ज़िंदगी भी अता करेंगे अल्लाह पाक, ताकि विलायत के मज़े भी तो हासिल करे आदमी के, वलीउल्लाह बनने के बाद वो मज़े क्या आते हैं। बहरहाल तो पहला जो अमल है वो है कुरान पाक तजवीद के साथ पढ़ने का एहतमाम करें, ये गुनाह कबीरा है और वाजिब है कुरान पाक को सही पढ़ना, तजवीद दुरुस्त करें। तो डेढ़ दो महीने की मेहनत है किसी भी खारी साहब से कुरान पाक को दुरुस्त कर लें, और अगर रोज़ाना नहीं पढ़ सकते तो हफ्ते में दो या तीन दिन पढ़ लें तो कुरान पाक इंशाल्लाह दुरुस्त हो जाएगा। नंबर दो, एक मुट्ठी दाढ़ी तीनों तरफ से रखना वाजिब है, वाजिब वाजिब फ़र्ज के दर्जे में होता है, चारों इमामों का इजमा है, किसी का इख्तलाफ नहीं कि एक मुट्ठी दाढ़ी तीनों तरफ से रखना वाजिब है, और अगर दाढ़ी एक मुट्ठी से कम है तो ऐसी दाढ़ी का रखना मुनाना हराम है, और हराम काम करने वाला कभी अल्लाह का वली दोस्त नहीं हो सकता। और चारों इमामों का इजमा है कि चावल के एक मुट्ठी से चावल के दाने के बराबर भी कम है तो दाढ़ी रखना है हराम है। इस तरह की वो असली दाढ़ी है, शरई दाढ़ी नहीं है, असली दाढ़ी शरई दाढ़ी, तो जहाँ मतलब कि अल्लाह कबूल भी कर लें, तो एक मुट्ठी दाढ़ी तोरी के नीचे से, एक मुट्ठी ज़्यादा हो तो काट लें फिर दाएँ से बाएँ से, तो ये रखिए दाढ़ी। और हज़रत वाला फरमाते थे रहमतुल्लाह अलैह कि जब दाढ़ी एक मुट्ठी हो जाती है तो कल्ब के अंदर एक ख़ास नूर पैदा होता है जो एक मुट्ठी से पहले नहीं पैदा होता। अभी अल्लाह वाले की बातें बहरहाल। और मूछे बिल्कुल बारीक रखें, बड़ी मूछ पर आप सुन इरशाद फरमाया मैं उसकी शफात नहीं करूँगा, मेरे औज़ो कौसर के करीब ना आए, कबर में उसे अजाब दिया जाएगा। नंबर तीन, कबर में जब मुनकर नकीर आएंगे तो गुस्से की आदत में आएंगे, ये बड़ी मूछ पर कितनी सख्त वईद है। ठीक है, तो वही बात कि जो ताल्लुक मानला अगर बढ़ाना है इनामात तक़वा में हासिल करने, तो भाई तख़वे की तरफ आएँ, और दाढ़ियों को जो लोग जिन्होंने नहीं रखी हो दाढ़ियाँ रखें, और जिनकी कम है एक मुट्ठी से पूरी कर लें, तो इंशाल्लाह ताला ये भी तफरी की तरफ जब कदम हो तो इंशाल्लाह उससे बाहर आएंगी दुनिया और आखिरत की परेशानियाँ अल्लाह पाक दूर करेंगे। वह मैं यफ़ील्ला जल्लो मफ़ज़ा। और आप सस्तम ने ऐसे लोगों को देख के नफ़रत से नागवारी से मुँह फेराए और उनको हलाकत की बद्दुआ दिए जिनकी दाढ़ियाँ मुड़ी हुई थी और जिनकी मूछें बड़ी बड़ी थी। बड़ी मूछ और बग़ैर दाढ़ी वालों को देख के आपने नागवारी से मुँह फेर के बद्दुआ दिया हलाकत बर्बाद हो ये तुम लोग क्या शक्लें बनाते। बहुत से लोग कहते हैं ना दाढ़ी टोपी में क्या रखा है, सोच तो दिल साफ होना चाहिए। तो इनको इन हदीस शरीफ के वाक़ात से तो ये सबक लेना चाहिए। और तीसरा मल मा असला मिन अलकाबैन मिन अलज़ारि फिन्नार, ऊपर से आने वाला लिबास जिससे टखने छुपेंगे जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। मर्दों के लिए टखने फोन के रखना वाजिब है दो सूरतों में, जब खड़े हो चल रहे हो, जब खड़े हो और चल रहे हो टखने खोल के रखना वाजिब है, बैठे लेटे हो तो भले छुप जाए नहीं तो जहन्नम में जलने की वजह है। और ख़वातीन को टखने छुपाने का हुक्म है, उल्टा दौर आ गया, मर्द टखने छुपाने में लगी हुई हैं, ख़वातीन जो पिंडलियाँ और टांगे खोलने में लगी हुई हैं। और दर्जी के बाद ये कहती हैं मुल्ला पर शलवार, मतलब शलवारें तो भाई पहनती नहीं है ख़वातीन इल्ला माशाल्लाह को पहनती, अब तो पजामे आ गए टाइट। सही है, तो अल्लाह के अजाब जो टाइट किस्म का होगा उससे डरना चाहिए। तो इन पजामे टाइट देखें तो अल्लाह का जो टाइट अजाब है उसकी भी नज़र रखनी चाहिए। बाज़ दफ़ा दुनिया में भी अजाब आ जाते हैं, सिर्फ मरने के बाद ही अजाब नहीं है। तो ये मामला है। तो कुरान पाक की तलावत हो गई, एक मुट्ठी दाढ़ी हो गई, टफने से ऊपर पैंचे हुए। और चौथा जो अमल है वो नज़रों की हिफाज़त करें। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाते हैं कुल लिलमुमिनीन यग़ुज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मोमिन मर्दों से कह दीजिए कि अपनी बाग निगाहों की हिफाज़त करें और शर्म गाहों की हिफाज़त करें। और ख़वातीन मोमिन औरतों से भी आप कह दीजिए कि वो भी अपनी नज़रों की हिफाज़त करें और शर्म गाहों की हिफाज़त करें। अल्लाह पाक आप सलम के ज़रिए मर्दों को अलग, ख़वातीन को अलग नज़रों की हिफाज़त का हुक्म दे रहे हैं। आप सलम आगे इरशाद फरमा रहे हैं हदीस पाक में कि ज़िनुल आइनैन नज़र, नज़रबाज़ी आँखों का ज़िना है। और आगे एक और हदीस शरीफ में आपने इरशाद फरमाया लानुन नाज़िरा तो मंजूर है रही, अल्लाह पाक लानत फरमा और कीजिए रसूल अल्लाह की लानत की बद्दुआ आ रही है कि अल्लाह पाक लानत फरमा जो बदनज़री करे और उस पर भी अल्लाह पाक लानत फरमा जो अपने आप को बदनज़री के लिए पेश करे। दो ख़वातीन जो बेचारी हर एक नामहरम के सामने आ जाती हैं और पर्दा नहीं करती तो उन पर भी रसूलुल्लाह की लानत की बद्दुआ और जो देख रहे हैं उनको उन पर भी लानत की बद्दुआ, तो दोनों पे लानत की बद्दुआ। और किसकी? रसूलुल्लाह की जिनकी नहीं कायनात बनी। ये मामूली गुनाह है तो, लेकिन इस तरफ तवज्जो कम है भाई, तो इस पर गौर करना चाहिए इन बातों के ऊपर। और लानत का मतलब होता है कि अल्लाह इसको अपनी रहमत से दूर कर दे। लानत लानत हम सुनते थे ना, मतलब कि अल्लाह इसको अपनी रहमत से दूर कर दे। तो और पांचवा अमल क्या है, या लमु खायनत अलायुनी वमा तुफ़ी सुदूर, कि अल्लाह फरमा रहे हैं कुरान पाक में तुम्हारी आँखों की सयानत को, बदनज़री को और ये जो आँखों की चोरियों को और अल्लाह खूब देखते हैं, और जिसके बाद देखते हो तुम बदनज़री करते हो और उसके बाद अपने सीनों के अंदर जो तुम रास पफाते हो गंदे ख्यालात ये नहीं पफाते हो, अल्लाह उनसे भी वाकिफ़ है। तो डरा रहे हैं अल्लाह पाक, एक तो बदनज़री करते हो पहले और फिर उसके बाद तुम गंदे ख्यालात पकाते हो अपने दिल में। देखो मैं देख रहा हूँ, अभी सुबह की बात नहीं कर रहा, डरा रहे हैं अल्लाह पाक को, यानी दिल को पाक साफ रखें। शैतान को भी वसूसों मुबतला कर दे अलग मामला है, वसू आदमी कर ले, उठ के बैठ जाए, पोजिशन चेंज कर ले, किताब पढ़ने लगे, लेकिन जान बूझ के लाना जमाना और गंदे ख्यालात पर उसमें मशगूल होना तो चारों अमाल का नूर सारा बर्बाद हो जाता है। दिल चूँकि गैर ये अल्लाह का घर है, बैतुल्ला हमारा जो दिल है, तो इसको पाक साफ रखे गंदे ख्यालात से, तो इंशाल्लाह निस्बत मालना कल्ब के अंदर ही पैदा होती है, इसी दिल को पाक रखा जाता है। इसकी मिसाल यूँ समझ लें, आप किसी रिश्तेदार को अपने मिलने वालों घर में बुलाते हैं तो आप अगर पखाना और पेशाब डाल के रखी है घर के अंदर तो कभी उस सूरत में आप किसी को नहीं बुलाएंगे, यार ये पखाना पड़ा हुआ है मैं कैसे बुला लूँ। आप कहेंगे पहले घर को पाक करो गंदगी से, फिर किसी को हम बुलाएंगे, यही करो। तो हम इंसान हो गया, हमारा ये हाल है। तो ऐसे कल्ब के अंदर जहाँ गैरुल्लाह की लीद गंदगी अलाजत भरी हुई हो गैरुल्लाह की, तो फिर अल्लाह कहाँ से आ जाएंगे उस दिन। एक बुजुर्ग फरमाते हैं शिकवा है खुदा मेरे दिल में नहीं आते, शिकवा है खुदा मेरे दिल में नहीं आते और हसीनों को दिल में अपने बैठा रखा है, कहाँ से खुदा आ जाएगा। ऐसे थोड़ी है, हम गैरतमान है, कोई हमें व्रत वाला एक और मिसान देते थे, कोई आपकी दावत करे और उसके बाद बेहतरीन उसने खाने लगा दी और चारों तरफ मुर्दा लाशें लेटाई और कफन पहना दे, तो आप नाराज़ होंगे कि यार कोई तमीज़ होती है, आपने मुझे दावत तो बुलाया था, ये देखिए ये तुमने मुर्दे लिटाए हुए चारों तरफ, आप उठ के चले जाएंगे आराम से। तो यही मामला है, तो दिल के अंदर मुर्दे ना हम लोग बैठाएं, गैरुल्लाह मुराद, ये जितने भी हसीन है ये सब मुर्दे होने वाले हैं। तो जिसकी जैसी गिजा होती है फिर वैसा हो जाता है। मुर्दों से दिल लगाएगा जिनको इन फ्यूचर मुर्दा बनना है, तो उसका अल्लाह ताला फरमाते हैं दिल अभी से मुर्दा होना शुरू हो जाएगा, और हय्यूल क़य्यूम से जो दिल लगाएगा वो हमेशा से हमेशा रहेगा। तो आप हमेशा वो अशाश बशाश रहेगा, तरोताज़ा रहेगा, चमकता रहेगा।
हाँ,
क्योंकि अल्लाह की हर लम्हे एक नई शान है, तो अल्लाह के आशिकों की भी हर लम्हे एक शान है, क्योंकि उन्होंने अपना दिल उनको दे दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन को। तो अल्लाह की तजल्ली का अक्स अल्लाह वालों के ऊपर पड़ता रहता है, जिससे वो चकाचक रहते हैं और माशाल्लाह अशाश बशाश रहते हैं। लेकिन जो हसीनों के गंदे मुकामात पे मरते रहते हैं पेशाब पखानों के ऊपर, तो फिर वो चुके गलने सड़ने वाली मुर्दा लाशें, तो उनके ऊपर भी एक अजीब सी कैफियत उनकी रहती है, बदहवासी सी, बावले पने की और उदासी की, गम की। क्योंकि नाकिस खुराक दी अपने दिल को उन्होंने हसीनों की, अल्लाह के फुर्क की खुराक दे दे तो जी उठते मुर्दे तेरी आवाज से। तो ना, तो दिल को अच्छी खुराक दें जो एक नंबर हो, हय्यूल क़य्यूम की खुराक दें, ताल्लुक मामला बढ़े, दिल को बिल्कुल पाक साफ रखें अल्लाह के लिए। फिर इन पांचों अमल की तौफीक, किसी भी अल्लाह वाले से जहाँ मुनासबत हो वहाँ ताल्लुक कायम कर लें, तो इंशाल्लाह थोड़े ऐसे में पांचों अमल की तौफीक इंशाल्लाह हो जाएगी। अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, या रब्बे करीम, या अरहमर राहिमीन। या अल्लाह, जो कुछ भी बोला गया सुना गया या अल्लाह, उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, कहने सुनने में गलती करनी बेशी हो गई तो बस दे, माफ़ फरमा दे, हमारा मिल बैठना भी तेरी रजा तेरी खुशी की नहीं है। या अल्लाह, इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाते, हम सब की कामिल मफ़रत फरमा। और अल्लाह, हमारे प्यारे आफ़िद जहाँ नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र की मजारिस की जितनी भी फ़ज़ाइल और जो फ़ायदे बयान फरमाएँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन वो सब के सब फजीलतें अपनी रज़ा कामदा के साथ हम सबको और हमारे अहल वयाल को अता फरमा दे। या अल्लाह, हमारी दुनिया भी शानदार बेहतरीन कर दे और हमारी आफरत भी बेहतरीन और शानदार कर दे। या अल्लाह, हाज़रीन मजलिस में से जिस जिसके दिल में जो भी जायज़ हाजात हैं, या अल्लाह तू जानने वाला है, हम सब की जायज़ हाजात को पूरा फरमा दे। या अल्लाह, जो भी हैं महरूम न जाए, दुनिया भी बना दे, आफरत भी बना दे। या अल्लाह, या रहमान रहीम, जिस या अल्लाह हमने से जितने भी लोग बीमार हैं अल्लाह सब को शिफ़ा कुल्ली नसीब फरमा, इतनी भी मुसीबत ज़दा हैं अल्लाह उनकी मुसीबतों को दूर फरमा, इतनी भी परेशान हाल हैं इनकी परेशानियों को दूर फरमा, जितने भी मुफलिस नादार गरीब है सफ़ो अलाल से गनी फरमा। या अल्लाह, बिलखसूस फ़लस्तीनी मुसलमानों की जान व माल इज़्ज़त आबरूजी हिफाजत फरमा, सफ़ो आफ़ियत अता फरमा। या अल्लाह, इन खबीस मलून यहूदियों को और उनसे आबारियों को जन से जन तबाह बर्बाद कर दे, सफ़े हस्ती से मिटा दे, इबरत का निशान बना दे। या अल्लाह, कश्मीर की कश्मीर के मुसलमानों की मदद फरमा, उनकी पावत फरमा, तमाम उम्मत मुस्लिम की जान व माल आबरू की पावत फरमा, सऊदी अरब, सऊदी अरब और पाकिस्तान समेत तमाम इस्लामी ममालिक को नेक सवाल क़यादत नसीब फरमा। या अल्लाह, महंगाई के अजाफ़ को हमेशा के लिए ख़त्म फरमा दे। या अल्लाह, तेजी के जो बिल बढ़ते जा रहे हैं इसको अल्लाह पाक बिल्कुल कम कर दे। या अल्लाह, ये सब हमारे गंदे अमाल और काले करतूतों सजाए जो हम देख रहे हैं अल्लाह, तो उन्हें बख्श दे, माफ़ फरमा दे। या रहमान रहीम, या रहमान रहीम, या रहमान रहीम। या अल्लाह, अल्लाह हमने से जो मुसलमान हैं, हम गैरत की सारी हदें हमने पार कर ली हैं और हम लोग बेगैरती की जो मराइल हैं उनकी भी हम हदें तोड़ते जा रहे हैं। अल्लाह पाक, इस वक्त यहूदियों की जो ज़ुल्म सितम की इतनी शिद्दत बढ़ चुकी है, लेकिन मुसलमानों ने तकरीबन अब बायकॉट हमारे यहाँ ख़त्म होता जा रहा है। इनके जितने भी ये KFC और मैकडॉनल्ड के जो फ्रेंचाइज हैं अल्लाह, वहाँ पर दोबारा से बेतहाशा रश देखने में आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अमन कायम हो गया फ़लस्तीन में और सारी चीज़ें ख़त्म हो गई और उन्होंने सुलह कर ली और उन्होंने माफ़ी मांग ली, सारे अहदो पैमान पूरे हो गए, सब मुसलमान भूल के दोबारा से इन चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू कर रहे हैं। अल्लाह, ऐसे मुसलमानों को हम सबको अल्लाह पाक ईमानी गैरत अता फरमा। अल्लाह, हमें कुफर में जाने से बचा ले, बजाय अपने मुसलमान भाइयों की नियम कुछ कर सकते करना तो एक तरफ, या अल्लाह हम इस इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको एक तरह से हम पैसा दे रहे हैं कि भाई मेरे मुसलमान भाइयों की लाशें गिराओ, यानी हम माबून मददगार बन रहे हैं अपने मुसलमान भाइयों की लाशें गिरवाने में। या अल्लाह, इस कुफर से हमें बचा ले, हमारा खात्मा कुफर पे होने से बचा ले। या अल्लाह, हमें कुत्ते की मौत भरने से बचा ले। या अल्लाह, इस पर इन बातों को समझने की अल्लाह पाक उन लोगों को तौफीक अता फरमा जो इन चीज़ों को हल्की चीज़ समझ रहे हैं, छोटा समझ रहे हैं। अल्लाह, हमारी बेगैरतियों को दूर फरमा दे, ईमानी गैरत अता फरमा, ईमानी गैरत अता फरमा दे। या अल्लाह, या रहमान रहीम, या अल्लाह, मेरे वालिद साहब की और मेरे मुर्शिदीन की और हमारे जुमले मरहूमीन की, कुल मोमिन मोमिनात की, कुल जिन्नात की, सब की कामिल मफ़रत फरमा और सबको जमन फिरदौस में आला से आला मुकाम नसीब फरमा। सब की कब्रों को नूर से भर दे। बच्चियाँ की शादी हैं, भी दुआ करें अल्लाह पाक जल्द से जल्द बेहतरीन जगह उनकी शादी करा दे, जहाँ दीन भी नहीं है कि बधाइयाँ बलाइयाँ और खुशखबरतीन के रसौली है। दुआ करें अल्लाह पाक जल्द से जल्द बग़ैर ऑपरेशन भी उनकी रसौलियों को ख़त्म फरमा कर तमाम बीमारों को शफा कुंडी नसीब फरमा। कुछ लोग हैं ऑफिस में, कुछ मसाइल चल रहे हैं, परेशान हैं, दुआ करें अल्लाह ऑफिस की परेशानियों को दूर फरमा दे। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.